का था, रूह वही, रूह नया।
वो इस प्रहार को सहने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था। फिर उसने जोर की एक घुरघुराहट की आवाज निकाली और उछलकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसने अपना जबड़ा खोला और उसकी गर्दन उसमें भर ली, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में लिपट गया और जीभ से उसके पैर चाटने लगा। वो भौचक्का सा उसे देखता रह गया, वैसा ही कुर्सी में पड़ा हुआ, थका और निढाल सा। दिन बीतते जा रहे थे। वो इस इंतजार में था कि शायद वो ऊब कर या हार कर खुद ही चला जाएगा, लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकलता था। कमरा बंद होते ही वो और अधिक निश्चिंत हो जाता। अक्सर वो दिन भर आराम कुर्सी पर बैठा झूलता होता, या वार्डरोब में घुसकर बैठा रहता, या रजाई तान कर खर्राटे भरता रहता। उसके लौटने पर हमेशा वो आंखें किचमिचाता हुआ स्वागत सा करता मिलता। जब कभी उसने उसे बाहर खदेड़ने की कोशिश की, वो लड़ पड़ता और उसकी पीठ पर चढ़कर झूमने लगता, या उसके दोनों हाथ अपने जबड़े में भर लेता और कटकटाने लगता। हार कर उसने उसे वहीं रहने दिया। ये सारा का सारा क्रम उसे एक दिव्य स्वप्न की तरह लगता। वो चाय पीता होता या दोस्तों के साथ बैठा होता, या कहीं जरा भी अकेला पड़ता कि वो उसी दिव्य स्वप्न में खो जाता। उसे लगता कि वो धूप में तपते चौराहों पर, दफ्तर के लंबे अंधेरे ठंडे गलियारों में, मसाले की दुकानों पर, सिनेमा हॉल में, नदियों के किनारे, पिकनिक में, या चाव खानों, या विवाह शादी के अवसरों पर, मेलों, बाजारों, या सुनसान सड़कों, या ठंडी दीवारों के आसपास हर जगह मौजूद है। वो बीच में से गिलास उठा लेता और सिप करने लगता। ये गलियारे में खड़ा खड़ा आने जाने वालों को घूरता है और उसे देखते ही पीछे लग जाता है। वो दफ्तर की मेज पर बैठ जाता है और ऊँगने लगता है। दफ्तर से उसे ढोता हुआ अपने को घसीटता हुआ चला आ रहा है। कभी कभी उसे लगता कि वो गहरी नींद में सोए हुए बच्चे की बगल में लेटा हुआ है, या पत्नी की चारपाई के नीचे ऊँग रहा है। वो कमरे में बैठा है और ऐसे दिख रहा है कि वो काफी खिड़की के शीशों से, दरवाजे के काठ से, दीवारों की ईंट, चूने, गारे या सीमेंट से, या छत की खपरेल से छनकर कमरे के अंदर चला आता है। सारे माहौल में एक सन्नाटा सा बरसा होता। पत्नी एक छाया में बदल सी गई थी। वो सिर्फ चलती या आंखें फाड़ के देखती, या अजीब से दयनीय ढंग से मुस्कुराती, या बच्चे को उठाकर पेशाब कराने लगती, या नाक उठाकर हवा को सूंघती रहती। गनीमत यही थी कि अभी वो दुर्गंध नहीं दे रहा था। लेकिन एक दिन ये भी हो गया। काफी दिनों बाद, शायद एक बरस या दो बरस, या कि पता नहीं, शायद जन्मांतरों के बाद, हाँ कुछ ऐसा ही लगता था, वो दो दिन तक कहीं नहीं गया। चुपचाप कमरे में पड़ा हुआ था। उसने पास जाकर देखा, क्या वो बीमार है या वो इतना सभ्य हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने पाया कि वो अजीब तरह से बदबू कर रहा है। शायद इस बदबू का पता उसे खुद भी हो गया था। अचानक वो बहुत डर गया। अब इसका पता लगाना कठिन नहीं है। अब निश्चय ही ये रहस्योद्घाटन हो जाएगा। एक दिन वो लौटा तो उसने पाया कि वो तहखाने में दरवाजे के पास बैठा है। उसने दरवाजा खोला तो वो तुरंत अंदर चला गया और बदबूदार हवा के भपके में विलीन हो गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और सिटकनी चढ़ा दी। फिर वो एकाध दिन तक इंतजार करता रहा। वो बाहर नहीं आया, बल्कि ज्यों ही शाम को वो बाहर से लौटता, उसकी आहट पाते ही वो तहखाने का दरवाजा खनोचने लगता था। वो दरवाजा खोल देता, वो सारे कमरे को अपनी बदबू से भर देता। फिर वो उसकी कमर पकड़ लेता, या उछलकर पीठ पर चढ़ जाता और झूमने लगता। यदि वो जरा भी प्रतिरोध करता तो वो लड़ने पर उतारू हो आता और गुरगुराने लगता। फिर एक नियम बन गया। शाम को लौटते हुए वो अपने को इस लड़ाई के लिए तैयार करता आता। तहखाने का दरवाजा खुलते ही वो एक लंबी उछाल लेता और उसके ऊपर सवार हो जाता। एक दिन फिर उसने उसकी गर्दन अपने जबड़े में जकड़ ली। थोड़ी देर तो वो इंतजार करता रहा कि वो छोड़ देगा, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने उसके तेज दांतों को गड़ते हुए महसूस किया। उसने एक जोर का झटका दिया तो वो दूर जाकर गिरा, लेकिन वो फिर उछला और गर्दन दबोचने की कोशिश करने लगा। ये असहाय था, शायद वो कुछ और सोच रहा है। उसने गौर किया, फिर उसने पटक कर घूंसों से मारते मारते बेदम कर दिया और तहखाने में डालकर दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद उसने पाया कि वो खुद उसकी बदबू में सना हुआ है। ऐसी स्थिति में सोने के कमरे में जाना असंभव था। वो तख्त पर बैठ जाता और सुस्ताने लगता या अपने को ब्रश करने लगता। दूसरे दिन बाजार से वो तांबे का तार खरीद लाया और उसे पटक कर उसके जबड़े कसकर बांध दिए। उसके बाद वो हमेशा बौखलाया हुआ और क्रोधांत दिखाई पड़ता। सिवा लड़ने के वो कुछ नहीं करता था। ये लड़ाई कभी कभी घंटों चलती और जब वो थक जाता या हार जाता तो भाग कर तहखाने में घुस जाता। फिर दिन, हफ्ते, महीने, वर्ष, अब उसकी आंखें और भी मिचमिची लगने लगी थी। तहखाना खोलते ही दुर्गंध का एक भपका निकलता और कमरे की रग रग में बिंध जाता। ऐसा लगता कि सिर्फ एक दुर्गंध ही रह गई है, खूंखार और रक्त पिपासु दुर्गंध। उसके काले चमकीले बाल झरने लगे थे और उसकी खाल जगह जगह खुरच कर बदरंग पड़ गई थी। वो बिल्कुल कंकाल हो गया था और थूथन पर कई छोटे छोटे घाव उभर आए थे, लेकिन वो पहले से अधिक तीव्रता से आक्रमण करने लगा था और जल्दी परास्त नहीं होता था। कभी कभी महसूस होता कि उसमें दोगुनी चौगुनी शक्ति आ गई है और आज वो खत्म करके ही दम लेगा। ऐसे में ही उस दिन वो सोने के कमरे में चला गया था उस खूंखार और रक्त पिपासु दुर्गंध के साथ, और वो फिर लौट आया था। पत्नी ने दूसरे दिन सुबह कुछ उल्टे सीधे सवाल भी किए थे। उसने हंसकर टाल दिया था, लेकिन शायद उसका शक धीरे धीरे वापस आ रहा था। वो चुपचाप लेटी रहती और घूरती रहती या दूसरी ओर मुंह करके सिसकियां रोकने का प्रयत्न करती रहती, बच्चे को पीट देती और स्तन छुड़ा लेती। उसे समझाना भी व्यर्थ लगता। वो करवट बदल लेता और धीरे धीरे एक भूरी दीवार उसके सीने पर उगने लगती।
क्या बात है, तुम बार बार घड़ी की ओर क्यों देख रहे हो? कोई नहीं आने का। क्या तुम डरते हो? घड़ी का मुंह दीवार की तरफ। अब ठीक है, मुझे कोई डर नहीं है। आई फील सबलाइम। क्या तुम जानते हो उनके साथ मुझे कैसा लगता है? जैसे कोई रीछ मेरे ऊपर झूम रहा हो। अब कोई आने को होती है? तुम विश्वास नहीं करते। तुम्हारे साथ? तुम तो एक बच्चे की मानिंद लेट जाते हो। इतने सॉफ्ट कोमल केवल मैं ही जानती हूं, माई चाइल्ड, मेरे शिशु। ये कौन बोलता है? कौन? वो उधर कमरे की आहट लेता है।
नींद नहीं आती, पत्नी पूछती है। जागना अच्छा लगता है, वो कहता है। पत्नी मुस्कुराती है, उठती है और जाकर खिड़की के पर्दे खोल देती है। वो फिर स्पर्श करता है, आंखों में कुछ अलग सी आंखें, बाहें, भरा हुआ गोश्त, आश्चर्यजनक नितंबों की गोल सुडौल रेखाएं, भरा हुआ कांपता वक्ष। सहसा हाथ में पत्नी के नन्हे नन्हे सूखे स्तन आ जाते हैं। वो गड़ जाता है और हाथ हटा लेता है।
क्या हुआ?
के भाव से पत्नी आंखों से ताड़ती है, चुप है। वो समझ जाता है और बचने के लिए उनकी घुंडियां जोर से मसल देता है। वो चीखती है, एक रस भरी चीख। वो एक खोखली हंसी हंसकर करवट बदल लेता है, फिर घूमता है और दबोच लेता है। सांस बदबू करती है ना, पायरिया नहीं है। पहले गुमती में दिन दिन भर तैरा करते थे, हर वक्त जुकाम बना रहता है, पीला पीला कफ निकलता है, बिल्कुल मवाद की तरह। सिर्फ इसीलिए चलते हैं? हजरतगंज में कोई औरत देखी? पीछे पीछे घूरते हुए दो चार चक्कर लगाया, लौट कर दो चार कपड़े लिए और स्टेशन भागे। 11 बजे उतरे और आते ही नोचना शुरू। वो तस्वीर देखते हो? मेरे पिता की है। तुम मुझे बिल्कुल उन्हीं की याद दिलाते हो। यू आर माई फादर। ऐसे ही शांति नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसे लो, सॉफ्टली यू डू, अनइमेजिनेबल, माई फादर। अब तुम्हें नींद आ जाएगी। तुम्हें मैंने किडनैप कर लिया है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर चले भी गए तो मैं पीछा करूंगी। मैं लगी रहूंगी। ये तुम्हारी सांस, ये तुम्हारा चंदन की तरह महकता बदन, मैं इसमें छा जाऊंगी। क्या तुम समझते हो इसे? अनइमेजिनेबल। देखना। वो इधर उधर देखने लगता है। लगता है सारा कमरा एक दुर्गंध में डूबा हुआ है। ये पत्नी की आवाज है? नहीं,
शायद, तभी पत्नी कहती है,
मुझे तो नींद नहीं आती, प्लीज मुझे माफ करो, तुम बस आते हो, कल गर्म पानी से नहा लो।
ये बिस्तर पर बाल किस चीज के हैं, इतने मोटे और काले काले।
वो दो उंगलियों के बीच एक बाल को उठाकर मसलती है।
ये तुम्हारे बाल हैं।
वो बदबू तुम्हारी सांस में, बदन में, कांख में, हथेलियों में, ये क्या है, अनइमेजिनेबल।
वो उठता है और बाथरूम की ओर चला जाता है। उसका सारा मुंह एक कड़वे थूक से भर गया है। यही थूक वो सड़क पर भी थूकता रहता है, पीला पीला थूक। लेकिन थूकते रहने के बावजूद हर वक्त एक नमकीन स्वाद बना रहता है। क्या उसे पायरिया हो गया है? वो कभी कभी सोचता है उसके मसूड़े उबड़ खाबड़ हो गए हैं और काले पड़ गए हैं। उसके बीच वाली दंत पंक्ति में दाढ़ में दो नुकीला लंबे दांत उगाए हैं और वे तालू में घाव कर रहे हैं। सुबह जब आईने में वो अपना चेहरा देखता है तो इस भ्रम को दूर करके नए विश्वास के साथ दिन शुरू करता है। लेकिन शाम होते होते वही सिलसिला, कड़वा नमकीन थूक उसके मुंह में इकट्ठा होने लगता है। बार बार वो पूरे दिन को थूकता रहता है, सारे अतीत को थूकता रहता है, लेकिन वो चीज नहीं जाती। एक लुआबदार झाग सी इकट्ठी होती रहती है अंदर ही अंदर, खून में मिली लिसलिसी सी झाग। उस रात बाथरूम से लौटते हुए उसने निर्णय लिया था कि अब बिल्कुल ही वक्त नहीं था इस तरह सोचने विचारने का, या एक अनाम मुंह में फंसे रहकर वक्त जाया करने में कुछ भी हो सकता है। अब वो बहुत दुबला हो गया, उसकी छाती पर हड्डियों का एक जाल उभर आया था, आंखें गड्ढों में चली गई थीं और नासूर की तरह जलता मवाद उगलती थीं। जब भी वो अपने कमरे में आता, उसकी आहट पाते ही वो तहखाने के किवाड़ भयावह रूप से खरोचने और घुरघुराने लगता। वो उसकी छाती के अंदर फेफड़ों को लगातार खरोच रहा था। अब उसकी आंखों से वो पहचान एकदम गायब हो गई थी। वो जन्मांतरों पार से एक अजनबी क्रूरता झांकती रहती। दरवाजा खुलते ही वो मल्लयुद्ध शुरू कर देता। इधर लगातार उसे लगता था कि उसके जबड़े को कसने वाला तार कुछ ढीला पड़ने लगा है और उसका जबड़ा पहले से कुछ ज्यादा खुला रहने लगा है। उसने दोबारा तारों को कसना चाहा तो उसने पूरी शक्ति से इसका विरोध किया था और उसके हाथों को काट खाने लपका था। उसने तय किया कल ही, अगले ही दिन, अब और नहीं चलाया जा सकता। उसका अनुमान ठीक था, वो तुला हुआ बैठा था, वो गुस्से में अंधा हो रहा था। पहली उछाल में वे गुत्थम गुत्था हो गए, वो भी तैयार था। वो उसके दांव पेचों से वर्षों से परिचित हो चुका था। उसने पाया कि वो खूंखार कमजोर पड़ रहा है। वो बार बार उछलकर उसकी गर्दन दबोचना चाहता, लेकिन अंततः उसे पछाड़ दिया और नीचे ले जाकर लगातार उसकी अंतड़ियों को घूंसों की मार से कूटने लगा। उसके जबड़े पर उगे हुए नासूर बहने लगे और कमरे की हवा में जैसे एक मादक जहर घुल गया। गुस्से में आकर उसने और भी जोर से घूंसे लगाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसकी ओर से कोई प्रतिरोध नहीं हो रहा है, तो शायद वो। तभी उसने लक्ष्य किया। वो चुपचाप नीचे पड़ा हुआ उन्हीं खूनी निगाहों से उसे तक रहा था, जैसे उसे कहीं भी चोट ना आई। वो सर्वथा निर्विकार सा, तटस्थ, चुप और शांत पड़ा था। सहसा ही वो पस्त पड़ गया और जाकर तख्त पर ढह गया। उसके हटते ही वो उठा। एक बार उसने बड़े जोर की जमाई ली और फिर उछलकर उसके ऊपर सवार हो गया। उसे लगा वो धीरे धीरे डूब सा रहा है, बेहोश हो रहा है, तिरोहित हो रहा है। उसने देखा कि वो दीवारों पर अंधेरे में अपनी छाप लगा रहा है, खिड़की की सलाखें पकड़ के झूम रहा है, गलियों, मकानों, चौराहों, सड़कों के मोड़ों और भरे बाजारों में ऊंघता हुआ टहल रहा है। उसने देखा कि वो उसकी पत्नी के बगल में लेटा है। तभी उसके जबड़े को कसने वाला तार शायद टूट गया। उसे लगा कि उसने उसका सिर बीच से दो टुकड़े कर दिया है। फिर उसे लगा कि वो अपना थूथन, फिर पंजे और फिर धड़ उसके फटे हुए सिर के बीच घुसेड़ रहा है। एक भयानक चिंगार उसे जैसे बहुत दूर से आती सुनाई दी।